ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और ग्रामीण समृद्धि के दोहरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर आज एक बजट पश्चात वेबिनार को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि हम एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं जहां किसान समृद्ध और सशक्त बने। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी किसान पीछे ना छूटे। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सशक्त करने का प्रयास किया गया है।
कृषि सेक्टर का विकास और हमारे गांवों की समृद्धि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपए सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है, जिसमें सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विश्व 21वीं सदी के भारत की ओर बेहद उत्सुकता से देख रहा है। नई दिल्ली में आज भारत मंडपम में एनएक्सटी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को जानने के लिए दुनिया भर से लोग भारत आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में एकता के संगम महाकुंभ का हाल ही में समापन हुआ। महाकुंभ ने पूरे विश्व को चकित कर दिया कि कैसे नदी के किनारे एक अस्थायी शहर में करोड़ों लोगों ने पवित्र स्नान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। श्री शाह ने 8 मार्च से राज्य के सभी मार्गों पर लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नई दिल्ली में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की मौजूदगी में बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों ओर बाड़ लगाने का काम जल्द पूरा किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार मणिपुर में स्थायी शांति बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में चमोली जिले के माणा गांव में हिमस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब तक 50 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया है, बाकी 5 की तलाश जारी है। 4 घायल मजदूरों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति का जायजा लेने और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। तेलंगाना के पर्यटन मंत्री जे कृष्ण राव ने आज कहा कि श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में फंसे श्रमिकों में से 8 की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 को कल शाम तक बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और बाकी 4 लोगों को निकालने में 2 और दिन का समय लग सकता है। पिछले शनिवार को सुरंग की छत का एक हिस्सा ढह जाने के कारण परियोजना और साइट इंजीनियरों सहित 8 श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। जिले के किस्टाराम इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम को इलाके में भेजा गया। माओवादियों ने जंगल में सुरक्षा कर्मियों पर घात लगाकर हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। गोलीबारी में 2 माओवादी मारे गए। मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तलाश अभियान जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का दौरा कर पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोगों के अनुरोध के बाद विरासत को संजोए रखने के लिए स्टेशन के डिजाइन को संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए अत्याधुनिक निर्माण तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है और इसे अगले 3.5 वर्षों के भीतर पूरा करने की योजना है। कराची में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक पहले ओवर में 5 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम 38 ओवर और 2 गेंद में 179 रन बनाकर आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।